This is an ABP Life podcast.
दिन भर में हुआ है बहुत कुछ और उन सारी खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए आ गई हूं लेकर के खबर दिन भर सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। गुड इवनिंग, मैं मानसी हूं आपके साथ। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। गुरुवार आज 22 अगस्त को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया। उन्होंने कहा राज्य के सभी 90 सीटों पर दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे। सीटों को आज रात तक फाइनल कर लिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि हम फिर से सत्ता में आएंगे। हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करना और इसे वापस राज्य का दर्जा दिलाना सबसे जरूरी है। यहां से मेरा खून का रिश्ता है, ऐसे में उम्मीद है कि चुनाव में लोग हमारा साथ जरूर देंगे। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि लोकसभा चुनाव में हमने पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। अब उनकी छाती 56 इंच की नहीं रही, वे कंधे झुकाकर चलते हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव में गठबंधन तभी होगा जब कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को इज्जत मिलेगी। बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर सामने आई। दरअसल पूर्व मंत्री श्याम रजक ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अपना इस्तीफा भेज दिया है। श्याम रजक आरजेडी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर थे। श्याम रजक ने अपने इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। आपको बता दें श्याम रजक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए थे। वहीं इस्तीफे को लेकर श्याम रजक ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर कहा मैं शतरंज का शौकीन नहीं था इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने बंगाल सरकार और पुलिस से जमकर सवाल किए। कोर्ट ने कहा मामले में गंभीर लापरवाही बरती गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कार्यबल को चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तैयार करते समय सभी हितधारकों की बात सुनने का निर्देश दिया। कोर्ट ने प्रदर्शनकारी चिकित्सकों से सामान्य कामकाज बहाल का निर्देश दिया और कहा कि न्याय और चिकित्सा को रोका नहीं जा सकता। सीजेआई ने कहा कि हमने नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। इस व्यापक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का मकसद ये है सभी हितधारकों से परामर्श किया जाएगा जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल हैं, इसलिए उनकी बात सुनी जाएगी। पीएम मोदी ने अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ साझा प्रेस वार्ता को संबोधित किया। वहीं पोलैंड के पीएम के संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने कहा मैं प्रधानमंत्री टस्क के इस सुंदर शहर वार्सा में उनके शब्दों और गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए उनका बहुत आभारी हूं। भारत पोलैंड मैत्री को मजबूत करने के लिए आपके अमूल्य प्रयास वास्तव में सराहनीय है। मैं आपके योगदान के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड टस्क से कहा आप लंबे समय से भारत के अच्छे मित्र रहे हैं। भारत और पोलैंड की मित्रता को मजबूत करने में आपका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इजरायली सेना लगातार गाजा पट्टी में घुसती जा रही है। इजरायल के टैंक हमास लड़ाकों को खदेड़ते हुए मध्य और दक्षिणी गाजा पट्टी के क्षेत्रों में अंदर तक घुस गए। दूसरी तरफ फिलिस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने गुरुवार को बताया इजरायली हमलों में पूरे क्षेत्र में कम से कम 22 लोग मारे गए हैं। व्हाइट हाउस ने बताया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर समझौते पर तत्काल हस्ताक्षर करने की जरूरत पर दबाव डाल रहे थे। इसके कुछ घंटे बाद इस तरह का परिणाम आया है। युद्ध विराम पर महीनों से चल रही वार्ता में बंधकों की रिहाई और गाजा में युद्ध विराम के मुद्दे घूम रहे हैं, लेकिन इजराइल और हमास अपनी मांगों पर दृढ़ता से अड़े हैं। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और भारत आ गईं। हसीना सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर खूब हमले हुए और अत्याचार हुआ। देश में अंतरिम सरकार भी बन गई है लेकिन इसके बाद भी हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। इस पर कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधा रमन दास ने बीते रोज 21 अगस्त को सोशल मीडिया पर लिखा हिंदुओं के खिलाफ लगातार दुर्व्यवहार हो रहा है। इस्कॉन प्रवक्ता ने वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि बांग्लादेश में हिंदू शिक्षक को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उनके पूर्व छात्र उन्हें परेशान कर रहे हैं और उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा बांग्लादेश में एक और हिंदू शिक्षक को मुसलमान छात्रों द्वारा अपमानित किया गया। टीम इंडिया 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अगले साल जून में इंग्लैंड दौरे पर जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने गुरुवार 22 अगस्त का इसका शेड्यूल जारी किया। टेस्ट सीरीज की शुरुआत 20 जून से होगी। इसके साथ ही भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2025-27 साइकिल का आगाज करेगी। जॉर्डन के अम्मान में चल रही अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में चार महिला पहलवानों ने फाइनल में पहुंचकर अपना मेडल पक्का कर लिया। वहीं भारत को अब तक 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। बुधवार को खेले गए सेमीफाइनल में अदिति कुमारी, नेहा पुलकित और मानसी लाठर ने मुकाबला जीतकर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया। और आखिर में जाते जाते आज के मार्केट का हाल आपको बता दें। बाजार बंद होने पर बीएसई सेंसेक्स 148 पॉइंट्स के उछाल के साथ 81,000 के ऊपर 81,053 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 40 पॉइंट्स की तेजी के साथ 24,810 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तेजी वाले शेयरों में भारतीय एयरटेल 1.60%, टाटा स्टील 1.38%, आईसीआईसीआई बैंक 1.38%, टाइटन 1%, JSW Steel 0.91%, Asian Paints 0.85%, Maruti 0.73%, SBI 0.45%, Bajaj Finserv 0.44% के उछाल के साथ बंद हुआ, जबकि गिरने वाले स्टॉक्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, NTPC, टाटा मोटर्स, TCS, पावर ग्रिड, सन फार्मा, अडानी पोर्ट्स गिरावट के साथ बंद हुए। ये थी आज शाम देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ, सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट।
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।